لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أي بني إسرائيل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ تم کو برتری اور فوقیت بخشی دنیا والوں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، نہ اس سے کوئی معاوضہ وصول کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی. یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب ہے اور ان کے تفصیلی حالات کا بیان ہے، جو پہلے پارے کے ختم تک یہ بیان طویل ہو گیا ہے. ان کے مختلف واقعات، اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ ان کے اوپر احسانات، پھر ان احسانات کی ان کی طرف سے ناشکری، دوسری اور واقعات، یہ ساری چیزیں اس کے ذمن میں آئی ہیں. سب سے پہلا احسان جو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کا بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں برتری انہی لوگوں کو حاصل تھی باقی مخلوق پر، جیسے اس زمانے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ وسلم کے پیروکاروں کو برتری اور فوقیت حاصل ہے. وہ خیر امت ہے، وہ سب سے افضل ہے، باقی سب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اب تک گزرے ہیں ان سب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہتری اور برتری اور فوقیت حاصل ہے ہر دوسرے پر، یعنی جو آپ کی امت میں شامل نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے. یہ بہتری اور برتری حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ اس امت میں شامل ہو جانا، تو یہ برتری اور بہتری خود بخود حاصل ہو جاتی. ہمیں کسی زمانے میں فوقیت حاصل تھی، وہ فوقیت ہم سے چھین لی گئی ہے، لہذا ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہودی ذہنیت ہے. ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، جہاں پر حب جاہ، حب مال کا مرض تھا، جو ان کو اس سے مانع، ایمان لانے سے مانع تھا، وہیں پر ان لوگوں کو حسد تھا کہ اب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ، انبیاء کرام علیہم السلام جو تشریف لائے ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لائے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرب سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو ان کو یہ غصہ ہے کہ نبوت اب تک ہزاروں انبیاء کی جو چلتی آئی ہے، ہمارے خاندان سے چلی ہے، تو اب یہ ہم سے چھن کر کے یہ عربوں کو کیوں دے دی گئی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کیوں دے دی گئی ہے؟ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نبوت دینے میں بھی میں تم سے مشورہ کر کے دیا کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ نبوت اور رسالت کو رکھنا کہاں ہے. اس قسم کے جوابات دے کر ان کی زبان خاموش کی، ان کا منہ بند کیا گیا. الغرض، جس زمانے میں یہ تھے اور ان کے آبا و اجداد تھے، وہ زمانے میں ان کو اور باقی امتوں پر، باقی لوگوں پر برتری اور فوقیت حاصل تھی. اور خطاب چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان سے ہے، ظاہر سی بات ہے ان پر تو یہ احسان نہیں تھا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کے ماننے والوں کا وجود و ظہور ہو گیا، تو اب خیر الامم تو آپ اور آپ کے ماننے والے بن گئے، تو اب یہ خطاب ان سے نہیں ہے. اب فضلتکم علی العالمین کا مطلب اس پیرائے میں ان کی فضیلت کو بیان کرنا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کو، تمہارے بڑوں اور بزرگوں کو یہ فضیلت حاصل تھی، اور ظاہر سی بات ہے بڑوں کو جو بزرگی، جو فوقیت، جو برتری، جو افضلیت حاصل ہوتی ہے، چھوٹوں کو اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، چھوٹے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی استفادے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی کو ملحوظ رکھ کر کے فضلتکم علی العالمین ان سے بھی خطاب کیا گیا. اس کے بعد دوسری آیت میں قیامت کے دن سے ڈرنے کا حکم ہے. قیامت کے دن کے جو اوصاف بیان ہوئے، پہلی صفت تو یہ ہے لا ترضی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گا. یا کوئی کسی کی طرف سے کچھ کافی نہیں ہو سکے گا، जैसे मिसाल के तौर पे उस दिन की हौलनाकियों को देखते हुए पहली बात तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा कि अपने आप को पेश करके दूसरे को बचा ले। जैसे यहाँ पर दुनिया के अंदर ऐसे वाकयात होते हैं कि एक दो दोस्तों में से एक दोस्त अपनी जान पेश कर देता है दूसरे की जान को बचाने की खातिर। दूसरी आयत के अंदर कियामत के दिन से डरने का उनको हुक्म है, वत्तकू यौमन, उस दिन से डरो। ये जो दिन है कियामत का दिन है, इस दिन के कुछ अवसाब बयान किए गए हैं। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, उसका पहला वस्फ है, कोई किसी की तरफ से कुछ काम नहीं आ सकेगा। ऐसे यहाँ होता है कि दुनिया के अंदर एक रवाज है, दो दोस्तों में से कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान बचाने अपनी जान का नजराना पेश कर देता है। अपने आप को पेश करने वाला कोई अमल, जैसे मिसाल के तौर पे बाप के लिए बेटा खुद को पेश कर रहा हो, बेटे के लिए बाप खुद को पेश कर रहा हो, बेटी के लिए माँ खुद को पेश कर रही हो, या माँ के लिए बेटी अपने आप को पेश कर रही हो कि मेरी माँ को छोड़ दो और मुझे उसकी जगह पर सजा दे दो, या मेरे मेरे साथ में वो मामला करो जो मेरी माँ के साथ होना है अगर कुछ बुरा होना है। ये मामला यहाँ जो होता है वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। दूसरे, वला युक्बलु मिन्हा शफाअतुन, सिफारिश भी वहाँ कबूल नहीं की जाएगी। ये जो फरमाया जा रहा है ये अपने आप को सिफारिश का हकदार समझने वालों से कहा जा रहा है, जो बेवजह लायक वालो मिन्हा शफा जो कहा जा रहा है, ये बिल्कुली या शफात की नफी नहीं की जा रही है कि एक शफात बिल्कुल नहीं होगी कियामत के दिन, ऐसा नहीं है। बल्कि काफिर जिन लोगों से सिफारिश कबूल, जिन लोगों की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, जिनके हक में कबूल नहीं की जाएगी, उसका बयान हो रहा है। लेकिन चूंकि अंदाज़े बयान आम है तो इससे गलत फहमी हो सकती है। जहन में रखना चाहिए कि शरीयत के मसाइल को जो निकाला जाता है उसके माखिज़ को और माखिज़ के नुसूस और इबारतों को पूरे तौर पर सामने रखने के बाद, कुरान करीम में यहाँ पर सिफारिश नहीं कबूल किया जाएगा, दूसरी जगह भी नहीं कबूल किए जाने का जिक्र मिलता है। लेकिन बाज़ आयतों में ये भी है कि सिफारिश वही कर सकेगा जिसको अल्लाह इजाज़त देंगे। मतलब ये है कि किसी ना किसी को तो अल्लाह की इजाज़त और मर्जी ही से सिफारिश की इजाज़त तो है। तो जाहिर है बिल्कुल लिया कि सिफारिश का सिस्टम और नज़म ही नहीं है, इसका इनकार कर देना और दलील के तौर पर इन आयतों को पेश करना, ये गलतफहमी है, लाइल्मी है और कम इल्मी और जहालत की निशानी है, जाहिर सी बात है। तो ला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ के अंदर जिस सिफारिश की नफ़ी की जा रही है वो सिफारिश होगी कि एक तो जो सिफारिश करने वाला है वो खुद बेईमान हो, कहाँ से उसको सिफारिश करने दिया जाएगा। दूसरे ये कि सिफारिश करने वाला तो मिसाल के तौर पर मुसलमान हो, लेकिन वो सिफारिश करना चाहता हो किसी काफिर दोस्त की, तो जाहिर सी बात है जिसके हक में सिफारिश की जा रही है उसके लिए भी ईमान दरकार है। तीसरे ये कि वो जायज़ सिफारिश कर रहा हो, अल्लाह ताला उसकी इजाज़त, अल्लाह ताला उसकी सिफारिश से राजी हो और उसको इजाज़त देते हो, तो उसको तो फिर उसके लिए सिफारिश कबूल की जाएगी, जिसको इजाज़त दी जाएगी फिर उसे कबूल भी की जाएगी। ईमान सिफारिश करने वाले में होना भी ज़रूरी है, जिसके हक में सिफारिश की जाए उसके हक में उसका भी साहिब ईमान होना ज़रूरी है, और अल्लाह ताला का उसकी सिफारिश करने से राज़ी होना ये ज़रूरी है। ये बातें जब पाई जाएंगी तो सिफारिश हो सकती है। मुख्तलिफ किस्म की सिफारिशें हैं जिसका सबूत मिलता है हदीस शरीफा के अंदर। सबसे बड़ी सिफारिश तो खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगी, जिसको शफात कुबरा कहा जाता है, कि महशर की सख्तियों के अंदर तख़फीफ लाने के लिए और हिसाब के इंतज़ार में जो तकलीफ़ हो रही है इंतज़ार की, उसको ख़त्म करने के लिए और हिसाब शुरू करने के लिए जो सिफारिश करेंगे सबसे पहले वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो करेंगे। आपके कहने से और हिसाब शुरू होगा, महशर की सख्ती कम होगी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होंगी। तो ये जो मरहला तय हो रहा है ये हुजूर पाक सल्लम की शफ़ात ही से तो हो रहा है। और चूंकि इस सिफारिश का की तरफ इकदाम नहीं करेंगे दूसरे अंबियाए किराम, और ये बहुत बड़ा एहसास होगा, इसलिए इसको शफ़ात कुबरा कहा जाता है, इसको मकाम महमूद कहा जाता है। और न सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ सिफारिश साबित है, बल्कि अहादीस शरीफा के अंदर ये भी है, अम्बिया किराम सिफारिश करेंगे, अलिया इज़ाम सिफारिश करेंगे, फरिश्ते सिफारिश करेंगे, आम नेक दीनदार मुसलमान वो भी सिफारिश करेंगे। बाज़ अमाल के बारे में आता है कि वो अमाल भी सिफारिश करेंगे, जैसे रोज़ा सिफारिश कर रहा है, जैसे कुरान करीम सिफारिश कर रहा है, सुबह सूरह मुल्क के बारे में आता है, सूरह मुल्क आके और सूरह बकरा आके सिफारिश करें, मुख्तलिफ आयत कुरान करीम की आयतों के बारे में ये बात मिलती है कि वो सिफारिश करेंगे बंदे की, सूरतों के बारे में मिलती है, अमाल के बारे में मिलती है ये बात। तो जब इतनी सारी चीज़ों के बारे में सिफारिश करने का जिक्र मिलता है, जाहिर है सिफारिश का इनकार नहीं किया जा सकता। फिर यह कि सिफारिश किस काम के लिए होगी, किस चीज़ के लिए होगी, एक तो वही है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे शफाअत कुबरा, और एक सिफारिश होगी हिसाब में आसानी के वास्ते। हिसाब की एक होता है सख्त हिसाब, एक होता है आसान हिसाब। आसान हिसाब वो है जिसके अंदर बंदे के आमाल तो पेश किए जाएं कि ये किया ये किया ये किया ये किया, लेकिन इसमें ये पूछा ना जाए कि ये क्यों किया, वो आसान हिसाब होता है, इसको हिसाब यसीरा कहा जाए कहा गया कुरान में। और एक होता है हिसाब हिसाब सख्त सख्त हिसाब, मुश्किल हिसाब, परेशानी में डालने वाला हिसाब, वो होता है जिसके अंदर आमाल भी पेश किए जाएंगे कि ये किया ये किया ये किया, और फिर पूछ भी होगी कि ये क्यों किया, इसको ये क्यों किया का जो सवाल है कुरान हदीस में इसको कहा गया ये मुनाकशा है, और मनोकिशा उज़्ज़िबा फरमाया गया कि जिससे फिर क्यों का सवाल हुआ उसको अजाब दिया जाएगा। तो जो सिफारिश की जाएगी वो आसान हिसाब के लिए भी की जाएगी, जो सिफारिश की जाएगी वो जहन्नम में जो जा चुके हैं उनको बाहर लाने के लिए भी की जाएगी, या जो तवील मुद्दत के लिए गए हैं उनकी उनकी मुद्दत में तख़फीफ़ के लिए की जाएगी। जो असहाब आराफ है जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर हो गई, तो वो ना वो जन्नत में गए हैं ना जहन्नम में गए हैं, वो आराफ में हैं, उनके लिए की जाएगी कि अब उनको जन्नत में भेज दिया जाए। जो जन्नत में हैं उनके उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए की जाएगी। ये कई सारी किस्में हैं सिफारिश की। वला युखज़ु मिन्हा अदलुन, फरमाया जा रहा क़यामत के दिन किसी से कोई फिदिया वसूल नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ दुनिया के अंदर बहुत से सरकारी महकमों के अंदर प्राइवेट इदारों के अंदर ऐसा होता है कुछ दे दिला के ज़ाती निजी तौर पर भी अफराद आपस में इस किस्म के मामले करते हैं, आप ये काम कर दो हम इस किस्म का काम कर देंगे, जायज़ तरीके से भी नाजायज़ तरीके से भी ये सूरतें होती हैं कि कुछ दे दिला के मामला हल करवा लिया जाता है। तो ऐसे ही अल्लाह पाक को किसी किस्म का कुछ नजराना दे दिला करके या रिश्वत दे दिला करके या पैसा अपने अपनी खिदमात दे दिला करके अपना अपना पैसा दे दिला करके अपनी जान को जहन्नम से आज़ाद करा लिया जाएगा। ला युखज़ु मिन्हा अदल, वहाँ ये सिस्टम ही नहीं होगा। वला हुम युनसरून, ना उनकी मदद की जाएगी, यानी कोई ज़बरदस्ती अल्लाह के नहीं चाहते हुए फरिश्तों की मौजूदगी में उस बंदे को जो अजाब में गिरफ्तार किया जाने वाला है जिसके हक में जहन्नम का फैसला हो चुका है, कोई उसका रिश्तेदार आके, कोई उसका बड़ा आके, कोई उसका बॉस आके या कोई उसका जिम्मेदार आके उसको अल्लाह के कब्जे से चुंगल से निकाल के ले जा रहा हो, लाहुम युनसरून, ऐसा भी नहीं होगा। दुनिया में ऐसा हो जाता है कि किसी को कोई दबोच कर ले गया, दबा ले गया, अब उसके पास से फिर उसके पास से उसको बाजियाफ्ती का मामला होता है कि वापस लाने का मामला होता है, तो कभी दे दिला के ये मामला हल कर लिया जाता है, कभी सिफारिश डाल के ये मामला हल किया जाता है, कभी ये होता है कि ज़बरदस्ती जाके उनसे लड़ भिड़ के फिर उन लोगों को जेर करके हमारे आदमी को अपने आदमी को वहाँ से ले आया जाता है। वहाँ पर इस किस्म के क़ियामत के दिन ऐसे ऐसा कुछ नहीं होगा। इस किस्म के तसव्वुरात ये यहूदियों के अंदर पाए जाते थे। जैसे सबसे बड़ी बुनियादी गलती तो उनकी ये थी कि वो समझते थे नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, इसलिए अल्लाह के बेटे हैं तो इसलिए क्या जहन में था, ये था लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामन मादूदा, हम कुछ भी कर लेंगे तो जहन्नम में नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो चंद दिनों के वास्ते जाएंगे। कुरान करीम के अंदर उनके ये अकायद बयान किए गए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वहाँ ऐसा ऐसा किस्सा थोड़ा ही है, ला तर्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक्बलु मिन्हा शफाअत वला युखज़ु मिन्हा अदल वला हुम युनसरून। फिर उसके बाद उनके उनके उस कौम की जिंदगी में पेश आए वाक़ियात को आगे आयतों के अंदर बयान किया गया। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔना यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, और उस वक्त को भी याद करो जब हमने तुमको फ़िरऔन के लोगों से नजात दी जो तुम्हें तरह तरह के अजाब चखाते थे, युसब्बिहूना अबनाअकुम तुम्हारे बेटों के गले काटते थे, वयस्तहयूना निसाअकुम तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ते थे, वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इस वाक़े में तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। फ़िरऔन को मालूम हो गया था नजूमियों के ज़रिए से कि उसकी सल्तनत के अंदर एक बच्चा पैदा होगा और इन्हीं इसराइलियों के ख़ानदानों कबीले से होगा, और वो फ़िरऔन के तख्त सल्तनत का तख्ता उलट देगा। तो फिर उसने उसका इंतज़ाम यूं किया था एक किसी बच्चे को जिसके पैदा होने की खबर मिलती थी उसको कत्ल करवा दिया जाता था, उसको मरवा दिया जाता था। इसका अल्लाह पाक ने यहाँ पर एहसान के तौर पे फरमाया कि ये जो तुम्हारे साथ वाकया हो रहा था, इस वाकये के होते हुए भी अल्लाह ने तुम्हारी नजात का सामान किया, और तुम्हारे साथ ये जो था कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने ज़बह कर जाती थी, और तुम्हारी औरतों को तुम्हारी बच्चियों को छोड़ दिया जाता था, फिर वो बड़ी होती थी तो फिर उनके घरों के अंदर खिदमतें किया करती थी, और वो तुम पर कोई एहसान करने के लिए नहीं, अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ा करते थे। इसमें वाकई अल्लाह की तरफ से बड़ी आजमाइश थी कि उनकी जो नियामत औलाद की शक्ल में दी गई थी वो उनके ऊपर उनसे छीन ली जा रही थी, उनके सामने ज़बह कर दी जा रही थी, तो सब्र का इम्तिहान था। और फिर ये भी हो सकता है कि बाद में नजात जो दी गई है, यानी बला उम्मीर रब्बिकुम अजीम में, इसमें आजमाइश थी, तो आजमाइश किस एतबार से थी? आजमाइश बच्चों को ज़बह करने के अंदर भी थी और नजात देने के अंदर भी थी। बच्चों के ज़बह करने में सब्र का इम्तिहान था, नजात देने के अंदर शुक्र का इम्तिहान था। वही ज़फ़रक़ना बिकुम अल-बहर फ़अंजैनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून। और फिर वो नजात देने की जो शक्ल हुई उसका इस आयत में बयान है, जब जब हमने समंदर को तुम्हारी वजह से फाड़ा, फिर हमने तुमको नजात दी और फिरौन के लोगों को डुबो दिया, और तुम अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे। यही हुआ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के पास अल्लाह के हुक्म से अपने रसूल होने का दावा सामने रखा और अपनी पैरवी का उसको हुक्म दिया, उसको नरमी तरीके से भी समझाया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से भी उसकी तायीद करवाई, और दोनों ने मिलकर बारहा उसके सामने उसको समझाने की, उसकी फहमाइश की कोशिश कर ली, फिर वो भी मानने को तैयार नहीं था। वो इनको उल्टे ताने दिया करता था कि तुम तो वही हो जो मेरे पास से मफरूर होकर भागे थे, तुम तो वही हो जिसको मैंने पाला है, तुम तो वही हो जो हमारी गुलाम कौम से ताल्लुक़ रखते हो। इस ये सारे किस्म के बयान कुरान करीम के अंदर आए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसके जवाब दिए, तो उसे एक अपनी रिसालत के दावे को तस्लीम करने के अलावा और फिरौन से उसकी खुदाई के दावे से दस्तबरदार होने के अलावा, अल्लाह की इताअत में आने के अलावा, उससे एक और ये मुतालबा भी था कि बनी इसराइल को तुम आज़ाद करो, यहाँ से जाने दो, ये जो गुलामी का सिलसिला तुमने जारी रखा हुआ है, इस सिलसिले को ख़त्म करो। अरसिल माना बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। वो उसके लिए तैयार नहीं था, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम रातों रात उनकी इजाज़त और मर्जी के बगैर ही बनी इसराइल को लेकर के निकलो, इनकी निजात का हम सामान करने वाले हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के निकले। अब उधर जब वो रास्ते, चूंकि रात के वक्त में निकले थे, छुप छुपा कर निकले थे, तो अल्लाह की मर्जी से अल्लाह के हुक्म से रास्ता भूल गए। जिस तरफ वो आगे चलते थे तो समंदर आ गया, हाइल हो गया, और पीछे पलट के देखा तो फिरौन का लश्कर इनके ताकुब में मौजूद था। अब वो लोग कहने लगे, इन्ना लमुद्रकून, मूसा हम तो पकड़े गए। फते मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, हो नहीं सकता, अल्लाह ने हमें निकलने का हुक्म दिया है इस वास्ते कि हमको बचाए, ऐसा हो नहीं सकता कि हम अल्लाह के हुक्म के ऊपर निकले हों और हमें डबो दिया जाए, हमें उनके हाथों मरवा दिया जाए। काल कल्ला इन्नमा या रब्बी सहदीन, मेरा रब मेरी रहबरी ज़रूर करेगा। चुनाचे फ़ाओहीना इला मूसा अनिदर ब्यासा कल बहर, अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा समंदर के ऊपर लाठी मारो, जो उनके पास आसा था वो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा तो वहाँ पर 12 रास्ते समंदर का पानी पूरा जाम हो गया, वो बिल्कुल रास्ते बन गया, वो ऐसा जैसे पानी नहीं है वो। फिर वहाँ से पूरी बनी इसराइल गुजर गए। हुक्म दिया कि वतरुकिल बहर रहवा, समंदर को दोबारा से डंडा और आसा मार करके फिर पानी न बना देना, उसको वैसे ही रहने दो रास्ते, ताकि तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा दुश्मन आ रहा है वो भी तो इसमें आ ले, फिर उसके साथ जो होना है वो हो जाए। तो उनको उसको उसी तरह छोड़ दिया गया। उधर बनी इसराइल पूरी समंदर वो दरिया पार हो गई, और फिर उसके बाद ये फिरौन का लश्कर भी उसके अंदर दरिया के अंदर दाखिल हुआ। अभी वो समंदर से बाहर निकलने नहीं पाया था, अल्लाह का हुक्म आया और सारों को डुबो दिया। जब हमने तुम्हारी खातिर समंदर को फाड़ा था और तुमको नजात दे करके फिरौन के लोगों को डुबो दिया था, तुमने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था, याद करो। फिर आगे है, वहीद वअदना मूसा अरबईन लैलतन सुम अत्तखज़्तुम अल-अज्ल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून सुम अफ़ौना अनकुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। उस वक्त को भी याद करो जब हमने मूसा को 40 रातों का वादा किया था, फिर तुमने उनके बाद में या उनके पीछे गौशाला परस्ती बछड़े की इबादत इख्तियार कर ली थी, और तुम अपने आप का नुकसान कर रहे थे, फिर हमने तुम्हें माफी दी उसके बाद में ताकि तुम एहसान मानो। जब बनी इसराइल दरिया पार होकर फिरौन की गुलामी से नजात पाकर दूसरी जगह आ गई थी, जिस जगह भी दरिया दरिया के उस पार जो भी जगह थी वहां पर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की थी, या बकौल बाज मुफस्सिरीन दोबारा ये मिस्र में आकर आबाद हो गए थे फिरौनियों के गर्क होने के बाद में, तो वहां पर इन लोगों को कुछ होश जब ठिकाने आए तो मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि अभी अल्लाह ने हमें सुकून नसीब कर दिया है, अभी इत्मीनान नसीब हो गया है, आज़ादी भी मिल गई है, तो अगर अल्लाह हमें कोई शरीयत दे दे तो ज़िंदगी का हम उसको दस्तूर अमल बना के ज़िंदगी गुजारें। ख्वाहिशें बड़ी करते थे लोगों की, आगे पूरे इनके वाकयात में आप देखेंगे। अजीब ख्वाहिश, हर चीज़ में ख्वाहिश है इनके, शरीयत भी मांग रहे हैं ख्वाहिश के तौर पे, फिर शरीयत मिल रही है तो आगे सवालात हैं कि अल्लाह डायरेक्ट बोलना हम को, हम मैं शरीयत दिया बोल के, फिर डायरेक्ट अल्लाह में वो बोल भी दिए, अल्लाह की बात सुन के आवाज़ सुन के भी फिर जो है बोल रहे हैं अल्लाह हमको डायरेक्ट दिखना। तो अलगरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने ये अर्जी रखी कि मेरी उम्मत की ये ख्वाहिश है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि कोहे तूर पे आओ और 30 दिन वहाँ पर और रह कर के रोज़े रखो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मुद्दत पूरी कर ली 30 दिन के बाद में उनको मज़ीद 10 दिन का हुक्म दिया कि और 10 दिन पूरे करके ये मुद्दत 40 दिन की कर लो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हक ताला को रोज़ेदार के मुँह की बू वो पसंद है जो मैदे के खाली होने की वजह से बुखारात की शक्ल में उसके मुँह से आने लगती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 दिन के रोज़े के बाद में इफ्तार कर लिया था तो उसके अंदर कमी आ गई थी। तो अल्लाह ताला तो महबूबियत के वास्ते और उस बू की पसंदीदगी की वजह से उनको हुक्म दिया था, उसके अंदर कमी आ गई, तो बोला गया कि फिर वो ज़रा फिर से ताज़ी करके आओ, उसको थोड़ा सा और बढ़ा के आओ। तो 10 दिन का फिर उनसे रोज़ा रखवाया गया, वो 40 दिन जब मुकम्मल हुए तो अल्लाह ताला ने उनको फिर तौरात अता फरमाई तख्तियों की शक्ल में, वो लेकर के उम्मत के पास आ गए। जिस वक्त गए हुए थे तो मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर पे, या वो को तौरात लेने से पहले के एतिकाफ और रोजे के मरहले में जो गए हुए थे, उस वक्त इन्होंने ये किया था कि गौशाला परस्ती की ख्वाहिश जाहिर की थी और उसमें लग भी गए थे। हुआ ये था कि सामिरी, जो जिसका नाम भी मूसा ही बताया जाता है, एक उसने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव के नीचे की मिट्टी को देखा कि खास असर रखती है, जहाँ भी उनके घोड़े का पाँव पड़ता है वहाँ पर फौरन सब्जा उग जाता है। उसने समझाई कोई ख़ास चीज़ है, फौरन वो मिट्टी उठा ली। और फिर हुआ ये कि उसने लोग ज़कात के तौर पे जो माल गनीमत ला के जमा करते हैं, ज़कात का माल जो ला के जमा करते हैं, और फिर उसको आग आकर के आसमानी जला देती थी, उन लोगों का वो सिलसिला चल रहा था, तो उसी सामान के अंदर, उसी सोने चांदी के अंदर उसने वो मिट्टी डाल दी और ये नीयत की कि ये बछड़ा बन जाए। तो फिर वो बछड़ा बन गया और फिर लहू खुवारुन, उसके अंदर से खो 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 जो गाय की जो आवाज़ होती है उस किस्म की आवाज़ आया करती थी, तो उन लोगों ने उसकी परस्ती शुरू कर दी। दूसरी कौमें जो बुत परस्ती किया करती थी उसको ये लोग देखते थे, उसको देख करके इनके इनके जहन में ख्वाहिश पैदा हुई, तो इन्होंने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यहाँ भी ख्वाहिश कर दी, इजअल लना आलिहा कमा लहुम आलिहा, हमारे वास्ते भी एक माबूद बना दो, इनके जैसा इन्होंने जैसी इबादत कर रहे हैं ना वैसी हम भी इबादत करते हैं, हमारे वास्ते भी एक माबूद बना दो ख्वाहिश। अलगरत फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, फिर उनके साथ में तंबी का मामला हुआ, फिर उनके सामने वो हक ताला का के तरफ से आई हुई शरीयत तौरात की शक्ल में किताब वो पेश की गई, तो वो कहने लगे नहीं हम नहीं मानते, अल्लाह को डायरेक्ट बोलना। ये सारे वाक़ात आगे आ रहे हैं, इसी वाक़े के अंदर, इसी इस आयत के अंदर उसी वाक़े की तरफ इशारा है कि जब हमने मूसा से वादा किया था 40 रातों का, जब वो गए तो फिर तुमने उनके पीछे गौशाला परस्ती को इख्तियार कर लिया था, और तुम अपना अपने आप का नुकसान कर रहे थे। बुत परस्ती करने से अल्लाह को क्या नुकसान होने वाला है, उनको हमारी इबादत से उनकी शान में कौन सी बड़ाई होने वाली है, हमारी नाफरमानी से उनकी शान में कौन सी कमी आने वाली है, अंतुम ज़ालिमून, नुकसान उनकी नाफरमानी करने वालों का है। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिक लअल्लकुम तशकुरून, फिर हमने तुमको माफ़ी दी उसके बाद में ताकि तुम हमारा एहसान मानो। हक ताला अपनी नियमतों पर शुक्र का जज्बा हमको नसीब फरमाए, आजमाइशों से हमारी हिफाजत फरमाए, मुकद्दर की आजमाइश आए तो सब्र सब्र की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।